प्रोग्राम सुनिला हमारी आवाज में एक और कांड आप लोगों के बीच में भेजत पानी और हम क्या आसाना बल्कि विश्वास जरूर बा कि आप लोगों के पसंद आई। कहाँ के कहानी बा, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, चार लाइन कवि जी बड़ा भूमिका के लाइन अच्छा लिखलन। गरीबी के ऊपर कवि ने प्रकाश डाला है भूमिका के अंदर। क्यों मालिक गरीबों को देते गरीबी, राजगद्दी का क्या हक इनका नहीं, करता घूम गुजारा बिचारा सड़क पर, और ठिकाना न निश्चित है जिनका कहीं, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, पीठ फैला कर चलता बच्चा बही, रविंदर वो पी कहे क्या लचारों लोगों का, प्रभु पास है कोई रास्ता नहीं। एक लाइन भगवानी का टुकड़ा बा मास्टर पन्ना और ये हमारे नई खोजवा बिरहा में का कव्वाली का टुकड़ा बा।
आहा
हमारे विरहा के शुरुआत हो गई। बतावल गई नजम के लाइन में कहा कहानी कहवा कवा बिहार प्रांत पटना सिटी का दस्तूर सही। बिहार प्रांत पटना सिटी का दस्तूर सही है हकीकत रामू राम का हुजूर सही। समय कट रहा कली की कठिनाई में बोझ ढोता वो परिवार का बुढ़ाई में। लोर बहाता बदकिस्मत को लाचारी से जीवन यापन करता रोज रोजदारी से। एक दिन की बात क्या एक दिन निकला रामू घर से सुबह बेला में। ए भैया एक दिन निकला रामू घर से सुबह बेला में हसा मुसीबत भरा झंझट को झमेला में। बात समझला कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली गई। हमारे बिहार राज्य में पटना जहाँ बिहार का राजधानी बना और पटना में क्यों नहीं जगह पटना सिटी में कंकड़ बाग। कंकड़ बाग में एक रामू नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। परिवार में के बा रामू रामू का दुलही अदूठे भगवान फूल खिलौले हूँ। बड़ा लड़का 8 बरस का छोटा लड़का 5 बरस। बड़ा लड़का का नाम श्याम और छोटा लड़का का नाम राम। समय बीतक बाबू गरीबी में मेहनत मजदूरी करके रामू अपने परिवार में खुश है परिवार को परवरिश कर रहा है। एक दिन सुबह के बेला में घर से रामू मजदूरी करने के लिए निकलता है। कंकड़बाग से चला है सिटी की ओर और जब सिटी की ओर चला है अचानक इसी बीच एक घटना घटती है। आ घटना घटल बाबू एक लाइन दर्ज बा ये सरज बापना उड़े ला फरा फरा बहे पूरा वैया हो। तलाश में पटना शहर में जा लेकिन हुआ क्या बाबू रामू भोले अपन कई के तैयारिया हो। कमवा के खातिर चल ले पटना कहरिया हो। Thank you. बाबू पीछे से एक पिकअप वाला रफ्तार में आता है और गरीब रामू को धक्का मारता है। इतना तेज धक्का मारा कि रामू रोड से टूट गया। देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि 4 फुट ऊंचा उड़ गया रामू, चौराहे पर गिरा। हुआ क्या बाबू? गिरी के चौराहे पीछे राम छटपटा ले, ए बाबू भैया कोई हमके बचा ले, केहू न जाला उनका लागवा, केहू न जाला उनका लागवा। इतना पिकअप का तेज रफ्तार था बाबू, उड़ जाता है रामू बेचारा गरीब आदमी, और रोड पर जब गिरता है उसका दोनों पैर डैमेज हो गया। उसी रोड पर छटपटा रहा है, कहता है भैया मेरी मदद कीजिए, लेकिन बाहर जमाना। आजकल हम देखत पानी बाबू, अभी हमन का देहात बड़ी नीक बा, बहुत अच्छा बा। केहू के कुछ हो जाला तो आदमी दौड़ के लगे जालन, लेकिन बड़ बड़ शहर में देखल जात बा कि वही जे आदमी छटपटात रहन वही रास्ता से आदमी गुजरत रहन, लेकिन केहू ध्यान देवे वाला तक ना रहे। रामू गुहार लगाता है कि भैया हमें कोई बचा ले, भैया हमें कोई बचा ले, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है, सब अपने काम में बिजी है, व्यस्त है, आ रहा है जा रहा है। जब पुलिस को पता चली है बाबू, पुलिस वाले उठा करके ले जा करके पटना PMCH में भर्ती करते हैं और परिवार को खबर देते हैं। रामू के पत्नी के जब खबर मिलल बा, कहली ना का कि पाई के खबरिया पहुंचली मौके पर गुजरिया हो, ए भैया तालावा में पोती के अपाना हो, काटे के पड़ी डॉक्टर कहलनी बयाना, तनी बात समझला, कहानी साफ साफ समझ में आ। पीएम सेठ ने जब आती है अपने पति की हालत देखती है और खबर सुन करके आई है, पति के पास बैठकर रो रही है। डॉक्टर आता है, कहता है कि रो मत, और रोने से कोई फायदा नहीं है, जितना जल्द हो सके रामू का दोनों पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन और बढ़ता जाएगा। अब आग हो जाती है रामू की औरत कि हम गरीबों का, हम लोगों के जिंदगी का सहारा यही एक कमाने वाले थे, और डॉक्टर इनकी दोनों पैर काटने के लिए कह रहे हैं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा, परिवार में कोई नहीं है, दो मासूम छोटे छोटे ये दो बच्चे हैं और मैं हूँ, मेरे पति की दोनों पैर, मेरे पति का दोनों पैर कट जाएगा, कोई कमाने वाला घर में नहीं है, हम लोग कैसे जिएंगे। लेकिन बाबू होनी को कौन कर सकता है, भगवान को शायद यही मंजूर था। अंत तो गतवा रामू का दोनों पैर काटा गया। लेकिन हुआ क्या बाबूजी? सहारा लूट गया है। ए बाबू, खैर जो होना था वो तो हो गया। धीरे धीरे रामू की हालत सुधरी है, दोनों पैर तो कट ही चुका है, और जब अस्पताल से निकलता है एक ही दिमाग में बात आई बा, वो बेचारी रामू का औरत का नाम बा चिंता, चिंता देवी, जैसन की पेपर पत्रिका में बतावल गई। चिंता का दिमाग नहीं बाकी अब कुछ करे लायक बढ़न ना, दूठी लड़का बढ़न, तो हम मेहनत मजदूरी हमके करे के पड़े और हम मेहनत मजदूरी करब, अपना दोनों लड़कन के अच्छा शिक्षा दीक्षा दे, पढ़ाई लिखाई हमारे दोनों लड़का समान दोनों प्राणी के पतवार बने। रामू एगो सलाह कैले बा अपना पत्नी चिंता से की सुना हमार बात माना, गलत की कहा। रामू बतावत था के चिंता, हम के लिए चल के रोज सवेरे कंकड़ बाग चौराहे पर बैठा था, हम भीख मांगब, लोग हमके देखिए दो चार रुपया मिली, तू मेहनत मजदूरी करा, दोनों प्राणी एक तरह तू पैसा कमाई जाये और लेकिन के पढ़ावल जाये। अच्छा सही बात चिंता का अच्छा लगल जच गई। रोजाना का काम रामू कंकड़ बाग चौराहे पर सुबह में चला जाता था, पत्नी और दोनों बच्चे ले जाकर बैठा देते थे, शाम को लाते थे, कुछ लोग दे दिया करते थे भीख के रूप में। उधर उसकी औरत चिंता मजदूरी करने लगी, परिवार का परवरिश हो रहा है बाबू। यही बीच में दशहरा का मेला आई और दशहरा के मेला में दोनों लड़का 8 वर्ष के श्याम 5 वर्ष के राम मम्मी से कहा के मम्मी हमने के मेला ना घूमी वो गांधी मैदान में बड़ा सुंदर मेला लागल बाटे, चलो हमने के गांधी मैदान तनी घुमा दो मम्मी बचपन के खुश राखे खाती। माई का दिल देखे बाबू बेटा बेटी के प्रति का हो खेला, भगवान देखे बेटा बेटी जितना इंसान का दिले हुई हम वो जरूर इंसान जानत हुई। आज बचपन के खुश राखे खातिर दोनों लड़कन के लेके वही मेला में चल ली ना, गांधी मैदान पटना में ली ना, लड़कन के लेके बड़ा खुश पड़ी देखावत पड़ी मेला। कवि जी लिखलन है का लेके दोनों लाल के लेके दोनों लाल के महतरिया लेके दोनों लाल के महतरिया बजरिया पिजवा और मम्मी भी खुश हुए दोनों लड़कन के देख। लेकिन सोचत पे आज चिंता वो मेला में लड़कन के अपना देख के कहा सोचत पे मनवा के आस पूरा हुई है तक घटना घटल बिछड़ल बाम से वो बिछड़ल बाम से नजरिया बिछड़ल बाम से नजरिया बजरिया बिछवा घूमे बाबू। घटना घटती है गांधी मैदान में, उस मेला में भीड़ भड़कम में भगदड़ मचा, अपने दोनों बच्चों को चिंता माँ बचाने के लिए अरे ममता लेकर भागती है। लेकिन वो भीड़ में बाबू भगदड़ में बड़ा बेटा श्याम कहाँ छूट जाता, उंगली छूट गया, श्याम कहीं और निकल गया भगदड़ में, छोटा सा 8 वर्ष का बेटा और अपने राम को लेकर के ये एक तरफ है। लेकिन जब भीड़ समाप्त जब भगदड़ खत्म हुई चारों तरफ से दौड़ दौड़ के रो रो करके अपने लाल को खोज रही है। उमा मेरा बड़ा बेटा गुम है, कहाँ है, कि कौन ले गया है, कहाँ पर चला गया। अब उस भगदड़ में भागते भागते भगदड़ में किसी तरह से वो जो बड़ा बेटा श्याम है पटना रेलवे स्टेशन पर आ गया। आज जब रेलवे स्टेशन पर आया है उसे पता नहीं चल रहा है कि मैं किधर जाऊं और रो रहा है। रोते हुए बच्चा को, 8 वर्ष का मासूम बेटा को एक दंपत दिखता है। शेठ और सेठानी, पत्रिका में जैसा प्रमाण मिला, धर्म शेठ। बम्बई जाना था उनको, वही पटना कुर्ला फास्ट ट्रेन पकड़ना था और वहीं पर थे, गाड़ी लेट थी। बच्चा को देखते हैं, सेठानी कहती है कि देखिए ना कितना सुंदर लड़का है, क्यों रो रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। शेठ का दिल नहीं माना, बाबू जाता है उस बच्चा के पास और बोलता है कि बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारे पापा कौन है, कहाँ पर हैं। वो शुद्ध बता नहीं पाता है, मम्मी मम्मी करके केवल रो रहा था। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मुझसे छूट गई है, मुझे मम्मी से मिलवा दो। सोचता है कि आखिर मैं करूँ क्या, बच्चा है किसी का। सेठ के दिल में दया आता है, कहता कि चलो इसको ले चलते हैं। क्योंकि भगवान ने सेठ सेठानी को एक भी बेटा बेटी नहीं दिया। सोचा कि ले चलूंगा और धीरे धीरे जब पता चलेगा पेपर ऊपर में निकलवाऊंगा, लड़का फिर धीरे धीरे बोलने लगेगा, पता बताएगा तो इसके माँ बाप को खबर दी जाएगी। अच्छा देखें, वो सेठ अपने बच्चा को, उस बच्चा को श्याम को चॉकलेट देता है, बिस्कुट देता है। लड़का तो बाबू प्यार को भूखा हो रहा, जैसे प्यार मिलल करे लगे चल गए। सेठ सेठानी के लगे वो लड़का जाता है और अंजाम ये निकला कि वो सेठ धर्मु सेठ उस बच्चा को लेकर के सीधे बम्बई चला गया। उधर बम्बई में उस लड़के का धर्मु सेठ के द्वारा पालन पोषण हो रहा है। इधर माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है। समय कहे धीरे धीरे बीतता गया, धीरे धीरे कह जला कि कोनो जखम भरा जाला। बतारी सोच गई कि हमारा बेटा अब हमसे बिछुड़ गए, ना मिल पाई। लेकिन माँ तो माँ होती है, कभी निभाव दिए है, माँ रोती है अपने बेटे के लिए, तड़पती है। उस समय का कवि का भाव है क्या। और रोवेली चिंता माई, और रोवेली चिंता माई पिटिया अपन छातिया हो हलो ना जाला हमसे ऐसन विपद। धीरे धीरे बीते लागल, जखम पुरान होखे लगल। माई धीरे धीरे, बाबू धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे बुलाए लगलन, लेकिन मतारी का कलेजा बेटा के प्रति कसकत बा। एक करे समय 12 बरिस का गुजर गई। आज 12 बरिस के समय जब गुजर गई, भयल का बाबू जो श्याम सेठ लेकर चला गया बड़ा भाई को। अब श्याम कितने बरस का हो चुका? 12, 8, 20 20 बरस का श्याम हो चुका। और इधर राम 5 बरस और 12 बरस 17 बरस का हो चुका। 17 बरस का छोटा भाई राम हो गया और 20 बरस का बड़ा भाई श्याम हो गया। उधर सेठ जी धर्मू सेठ इतना लाड प्यार दिए उस बच्चा को, श्याम को, कि वो अपना बेटा बना लेते हैं। कागज द्वारा भी लिखित रूप में वो अपना बेटा मान लिए और सारा वसीयत अपना उत्तराधिकारी उस श्याम को घोषित कर दिया। भगवान धीरे धीरे समय गुजरता गया, 12 वर्ष के अंदर बाबू आज वो सेठ और सेठानी, धर्मू सेठ और धर्मू सेठ की पत्नी, दोनों इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग लोक में चले गए। अब उस कंपनी का, उस सेठ का एक कंपनी था कल्याण में, कपड़ा छापने वाली, कपड़ा छपाता था, वही कंपनी थी। और उस कंपनी का मालिक हो गया श्याम, पूरी धन दौलत का वारिस श्याम हो गया। इधर संयोग देखें, छोटा भाई जो राम था पटना शहर में अपने माँ के बाप के साथ रहता था। राम एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ तुम कितने दिन तक मेहनत मजदूरी करोगी? एक काम करो कि हम बाहर जाना चाहते हैं और बॉम्बे शहर में जाएंगे, वहाँ अमीरों की शहर है, वहाँ कहीं कंपनी में फैक्ट्री में काम लगेगा, मैं इंटर कर चुका हूँ तो हम लोग का परवरिश हो जाएगा। माँ नहीं चाहते वे भी बेटा को रुक नहीं सकी, रोती है कहती है कि बेटा तुम ही तो एक सहारा हो, एक बेटा तो मेरा खो ही गया, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। लेकिन नहीं चाहते हुए भी राम को रोक नहीं पाई। अब जो रोक नहीं पाई बाबू, राम चला गया उसी महानगर बॉम्बे में, भटकते भटकते खुदा न खास्ते मालिक की मर्जी उसी श्याम की फैक्ट्री में जाता है, अपने बड़े भाई की फैक्ट्री में जाता है जहाँ कपड़ा छपाई हो रही थी, और उसे उस फैक्ट्री में काम भी मिल गया। इतना लगन से राम काम किया उस फैक्ट्री में बाबू कि मालिक के नजर में हो गया, श्याम के नजर में हो गया। लेकिन श्याम क्या जानता है कि ये मेरा भाई है, और राम भी क्या जानता है कि ये मेरे बड़ा बड़ा भाई है। श्याम एक दिन राम को बुला करके और सारे जितने लेबर थे कंपनी के सबका इंचार्ज बना दिया, इसकी ईमानदारी को देखकर। ईमानदारी लगन से उस फैक्ट्री में काम करता था राम, महीने महीना माँ अपने मम्मी और पापा का खर्चा भेजा करता था। एक दिन मम्मी बोलती है कि बेटा बहुत दिन तुमको गए हो गया, मैं देखना चाहती हूँ, तुम आओ और आओ फिर चले जाना। राम जाता है श्याम के पास छुट्टी मांगने के लिए, कंपनी का जो मालिक है, कंपनी के मालिक से छुट्टी मांगना चाहता है, मांगने के लिए जाता है। श्याम बोला कि राम तुम्हारे घर में कौन कौन है? श्याम बोला कि साहब मेरे घर में मेरी एक बुढ़ी माँ है, एक लंगड़ा पिताजी है, हम ही उन लोगों का परवरिश है, हम ही उन लोगों का देख रेख करते हैं। हर महीना यहाँ से जो तनख्वाह सैलरी मुझे मिलती है वो मैं मम्मी पापा को भेजता हूँ, तो घर का खर्चा चलता है। पापा भी कुछ करने लायक नहीं है, मम्मी भी से भी अब मजदूरी नहीं हो रहा है साहब, और मम्मी मुझे घर पर बुलाई है, मुझे कम से कम 10 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। श्याम कहता है कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा और तुम। तब राम कहता है कि हाँ साहब हैं तो तीन ही आदमी, लेकिन मम्मी कभी कभी कहती है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जो मेला के भगदड़ में घुमाने के लिए ले गई थी तुम लोगों को मेला, और बचपन में ही मेला में भगदड़ आया और उस भगदड़ में तेरा बड़ा भाई खो गया, हम लोगों से दूर चला गया, कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। राम को इसकी बातों में, राम की बातों में श्याम को सच्चाई दिखाई पड़ रही है। कहा कि जाओ 10 दिन के लिए छुट्टी भी ले लो, और एक काम करना कि तुम्हारे लिए तो रूम है ये है, एक में दूसरा रूम तुमको अलॉट कर देता हूँ, जहाँ कम से कम अपने फैमिली को फैमिली वाला रूम फ्लैट एक अलॉट कर देता हूँ, और अपने मम्मी पापा को यहीं लेते हैं, क्यों छोड़े हो वहां पर, यहीं लेते हैं। देखें संजोग कहां से कहां तक कहानी मोड़ लेती है। श्याम के कहने से राम जाता है, आता है पटना में, 10 दिन रहा है और मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा अब चलिए वहां रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अकेला आप लोग क्यों रहते हैं, वहीं पर चलिए। मम्मी और लंगड़ा पापा को भी लेकर के वो चला गया, लेकिन इसी बीच जाकर के ड्यूटी कर रहा है श्याम फैक्ट्री में, मम्मी पापा डेरा पर रहते थे, इसी बीच एक घटना घटती है। तरज बा का तरज कराएंगे मामा सर, हमारे कैसेट का गीत लगल बा जो रुआ सब सुनी ला कि झूलनी पहली झोंपे, झूलनी पहली झोंपे दार हो गोरी जई बुगवनावा। कभी जी भाव दिया कि नैना निहारे ले, अब नैना निहारे ले नजारिया माई पागली मयारिया। इसी बीच ये घटना घटती है बाबू, सारे लेबर काम कर रहे थे, कंपनी का मालिक श्याम अपने ऑफिस में बैठा था, और राम सभी लेबरों को घूम घूम करके देख रहा था। तब तक एक कपड़ा छापने वाला जो मशीन था वो मशीन अचानक टूट जाता है और एक लेबर के ऊपर गिर जाता है, हाहाकार मच गया, लेबर घायल हो गया मशीन से, कंपनी बंद हो गई, काम बंद हो गया, हल्ला मच गया कि लेबर घायल हो गया, लेबर घायल हो गया। बगल में राम की फ्लैट था बाबू, जो माँ बाप रहते थे, जब सुनती है माँ कि कंपनी में एक लेबर घायल हुआ है बाबू, रूम से निकल कर दौड़ते हुए कंपनी में आती है, लोगों की भीड़ लगी है, अपने ऑफिस से निकल करके, और कंपनी का मालिक श्याम भी आता है उस मजदूर को देखने के लिए। और जब उस राम की माँ की नजर कंपनी के मालिक श्याम पर पड़ी, एक तक निहारने लगी, देखने लगी, कभी निभाव दिए हैं क्या गई न तबले श्याम के सीना पर दिया ना। उसे तुरंत श्याम एम्बुलेंस मंगा करके हॉस्पिटल भेजवाया, ठीक था, अच्छा, सुरक्षित, कुछ घायल हो चुका था, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर बताया, फोन से हमेशा बात करता रहता था श्याम, और डॉक्टर से सूचना मिली कि कोई घबराने की बात नहीं है। श्याम ने पूरे मजदूरों के सामने बोला कि आप लोग घबराइए मत, हम लोगों का आदमी अच्छा है, सकुशल है, घायल कुछ हुआ है, चोट लगी है, वो दो चार दस दिन में आराम हो जाएगा। सभी लोग भगवान का शुक्र मनाने लगे, लेकिन वो माँ, राम की माँ, श्याम को देखते ही एक नजर में परखने लगी, कौन माँ अपनी बेटा अपने ब्लड को नहीं परखेगा बाबू, एक नजर में, लेकिन शंका है कि मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है। तब तक उसकी नजर श्याम के गर्दन पर पड़ी है बाबू, जो फैक्ट्री का मालिक था। अब इसे धीरे धीरे जो शंका था वो विश्वास में बदलने लगा, राम की माँ को जो शंका था वो विश्वास में बदलने लगा। धीरे धीरे उस श्याम के नजदीक जाती है, राम कहता है कि माँ चलो अपने फ्लैट पे चलो, वो मालिक हैं, उनसे क्या कहना है, उनसे क्या बात करोगी। लेकिन माँ का कलेजा, माँ का दिल कहती है कि अरे राम, मैं एक माँ हूँ और वो मालिक है तो ठीक है, माँ से मालिक है, माँ से माँ है, तो उस मालिक का भी तो कोई माँ होगा, उस मालिक का भी तो कोई माँ होगा बेटा, आखिर मुझे मिलने एक बार मिलवा दे, क्यों तू मुझे बार बार कहता है कि चलो फ्लैट में मालिक के सामने मत जाओ। तब तक श्याम सुन जाता है, बोला कि राम क्या बात है, कौन है, तुम्हारी माँ है, यही कहा। सक पकाते हुए राम बोला कि हाँ साहब, यही मेरी मम्मी है, क्या कहती है, क्या कह रही है, कोई बात है। श्याम बोला, राम बोला कि साहब क्या कहूँ, मम्मी है और आपसे मिलना चाहते हैं। कहा कि हाँ हाँ, लाओ लाओ मेरे ऑफिस में आओ, लाओ मम्मी है आपकी, तो क्या बात है, ऑफिस में चलता हूँ, ऑफिस में लाओ। ऑफिस में जाता है श्याम, अपने कुर्सी पर बैठता है, राम अपने मम्मी को लेकर उस ऑफिस में जाता है, नजदीक जाती है उस ऑफिस के अंदर, श्याम पूछता है कि माँ क्या बात है। कहती है कि बेटा बात तो बहुत है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। राम की मम्मी कहती है कि बेटा बात तो बहुत है और नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ बेटा कि तुम सही सही मुझे बताना, तुम्हारे मम्मी पापा कौन है। श्याम हंसने लगा, आप ये जानकर क्या करोगी, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, मैं अकेला हो गया मम्मी पापा के बगैर। राम की माँ कहती है कि नहीं बेटा, ओ मम्मी पापा तेरे लिए भगवान थे, लेकिन मुझे विश्वास है, मेरा दिल कहता है कि तू अकेला नहीं है, अभी तेरे बहुत लोग हैं। श्याम हंसता है, कहता कि तू ऐसी बात करती है माँ। नजदीक जाती है, कहती है गर्दन पर हाथ रख करके कि ये लहसन तुम्हारे बचपन से है। तब श्याम अवाक हो जाता है, कहता है कि तुम कैसे जानती हो कि लहसन मेरा बचपन से है। कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, ये लहसन तेरे बचपन से है, और अपना शर्ट खोल दे, अपना ये जो कमीज पहना है, ये जो शॉर्ट पहना है, भूषण पहना है, इसे खोल, खोलो बेटा, मेरी बात को बुरा मत मानना, तेरे पीठ पर दाग होगा, वो भी बचपन का है, तू बचपन में एक बार घायल हो चुका था। वास्तव में जब शॉर्ट खोला जाता है, उसके पीछे पीठ पर देखा जाता है तो पीठ पर घाव का दाग था। अब श्याम को विश्वास हो गया, कहा कि माँ तुम कैसे जानती हो। कहती है कि माँ तुम्हारी कोई मैं बनावटी माँ नहीं हूँ, मैं हकीकत तुम्हारी माँ हूँ और तू ही मेरा बेटा है, ये राम का बड़ा भाई तू श्याम है। पूछ राम से, मैं कहा करती थी कि तेरा बड़ा भाई श्याम मेला में गुम हो गया, आज तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन बेटा आज तू मिल गया और मैं धन्य हो गई। मैं दुआ देती हूँ उन इंसान को, तेरे धर्म के माँ बाप को, जो मेरे बेटा को ला करके और इतना बड़ा आदमी बना दिया। एक तरफ श्याम रोता है, एक तरफ माँ रोती है राम की। देखें भगवान कहाँ से कहाँ तक मिलाते हैं, और कहानी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई। श्याम अपने कुर्सी से उठता है और जा करके उस राम की माँ के पांव को पकड़ता है, चरण स्पर्श करता है, कहता है कि माँ मुझे भी विश्वास हो गया कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी जन्म की माँ है। कवि जी भाव लिखे हैं तेरी के अंदर, क्या भाव दिहल गई, अल्लाह के लाइन में का दिहल गई। गर्मी के ताप से गर्मी के ताप से सूखला फुलवरिया जैसे जे बेतनी बात मतारी बतौले बे, एक तरफ मतारी रोड पे, एक तरफ झरझर झरझर वो कंपनी का मालिक श्याम रोड। बीतल बात कुछ कुछ आँख के सामने जैसे सिनेमा चलेला, ओ तरह बीतल बात श्याम के कुछ कुछ यादाश्त आवे लगल कि मेला में भगदड़ भइल है। हम भाग के ली रेलवे स्टेशन पर, तब वो बतौला ना कि हाँ माई ये बात ठीक कह लू, आप ठीक कह रही हैं। और उस भगदड़ में मैंने पटना रेलवे स्टेशन पर आ गया था, बच्चा रो रहा था, मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। तब तक मेरे धर्म के माता पिता वही धर्म सेठ जी और उनकी पत्नी हमें सहारा बनी और हमको अपना बेटा मान करके इस बंबई शहर में ला करके उन्होंने वास्तव में अपना बेटा बना लिया। माँ बेटा दोनों गले से लिपट करके खूब रोते हैं, लेकिन छोटा भाई जो राम इस माँ बेटा के मिलन को देख करके अपना भूल जाता है कि मैं भाई भी हूँ। लेकिन श्याम कंपनी का मालिक माँ को चुप कराता है, आंसू पोंछता है और देखता है कि राम छोटा भाई कोने में खड़ा होकर के अपना मुंह फेर करके फूट फूट करके रोता है। जाता है माँ को लेकर के राम के नजदीक श्याम और कहता है कि क्यों भाई, क्या तुम हमसे रूठ गया, क्या तुम हमसे रूठे हो, क्यों रो रहे हो, आज तो खुशी की दिन है। एक तरफ मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की दिन है कि मेरी माँ भी मिल गई और मेरा छोटा भाई भी मिल गया, लेकिन माँ और भाई राम क्या पिताजी से नहीं मिलाओगे तुम। इतना सुनते ही छोटा भाई राम ऑफिस से निकलता है, दौड़ करके जाता है फ्लैट में अपने और अपने लंगड़ा पिता को बेहल चित की वो कुर्सी जो होता है उस कुर्सी पर बैठा करके और ऑफिस में लाता है श्याम के। श्याम दौड़ करके जा करके उस लंगड़ा बाप का दोनों पांव चूमता है और बाबू प्रमाण मिला कि आज भी वो श्याम अपने मम्मी अपने पापा और उस छोटा भाई राम के साथ आज बंबई के कल्याण में आराम से जिंदगी बिता रहा है। सभी लोग खुश हुए, दिवाली मनाई गई इस खुशी के अवसर पर। भाई माँ और बाप मिलकर के कंपनी के पूरे मजदूरों के साथ आज दिवाली मना रहे हैं। कभी जी भाव दिए क्या,
बगिया में खिलल फूल हो, उजड़ल
गुरु जद्दू लौटन की लारे फुलवारी कथन करे कवि रविंदर अनुज की तैयारी।